श्रोताओ नमस्कार। हमेशा की तरह आपका मनपसंद बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से पौलुस प्रेरित द्वारा लिखी पहला थिस्सलुनीकियों नामक पत्रिका गहराई से अध्ययन कर रहे हैं और श्रोताओ हम विश्वास करते हैं कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने इस बाइबल अध्ययन को सुने और जीवन के लिए आत्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करें। प्रस्तुत है आज का ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका लेखक पौलुस है। और पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि मसीह के आगमन की आशा उत्साह प्रदान करती है, क्योंकि हम परमेश्वर के क्रोध और महाक्लेश से बचा लिए जाएंगे। हम प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। अतः पौलुस कहता है कि हम विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। तदुपरांत वह हमें आदेश देता है कि हमारा मसीही आचरण कैसा होना चाहिए। तो इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में दिया है, ताकि हम आपके जीवित और सच्चे वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि आज जब हम आपके वचन में से सुनते हैं, हम समझ सकें, अपने जीवन में ग्रहण कर सकें और हर एक प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, दुनियावी चिंताओं से, शैतान के हर एक छल प्रपंच से आप सब की रक्षा करें। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, बीमार अवस्था में हैं। पिताजी, उन्हें भी अपनी शांति प्रदान कीजिए। आज इस घड़ी हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए आप मेरे साथ पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय उसके 11 पद को निकाल लीजिए। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। यहां पर हम देखते हैं पहला आदेश, एक दूसरे को शांति दो, अर्थात एक दूसरे को विश्वास में प्रोत्साहित करो। दूसरा आदेश, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। वे ऐसा ही कर रहे थे। पौलुस कहता है, उन्नति का कारण बनो, अर्थात एक दूसरे का निर्माण करो। हमें एक साथ काम करने वाला दल होना चाहिए। एक दूसरे का निर्माण परमेश्वर के वचन से करना है। हम आगे पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय उसके 12 और 13 पद में, हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। यहाँ तीन आज्ञाएं एक साथ हैं, सम्मान करो किसका? परमेश्वर के वचन के शिक्षकों का। हमें उन्हें स्वीकार करना है। पौलुस थिस्सलुनीकी की स्थानीय परिस्थिति के संबंध में चर्चा कर रहा था। वह वहां एक महीना भी नहीं रहा था, परंतु वह उन्हें मसीह के ज्ञान में ले आया था और उन्हें मसीही शिक्षाएं दी थी। जब पौलुस वहां पहुंचा और सुसमाचार सुनाया, तब वहां एक भी विश्वासी नहीं था। जैसा कि हम प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसके 2 और 3 से पाते हैं, इसका अर्थ है कि थिस्सलुनीके के सब विश्वासी एक ही साथ पौलुस की शिक्षाओं द्वारा मसीह के निकट आए थे। उनमें किसी को शिक्षा देने का, किसी को प्रचार करने का, किसी को सहयोग देने का वरदान प्राप्त था। उद्धार पाने पर प्रत्येक विश्वासी को कोई न कोई वरदान प्राप्त होता है, और यह वरदान विश्वासियों की देह के निर्माण के लिए होता है। मेरे विचार में थिस्सलुनीके के विश्वासियों में यह मानसिकता थी, हम दोनों ने तो प्रभु को एक साथ ग्रहण किया है, मैं उसके जीवन को उद्धार पाने से पूर्व से जानता हूँ, उसे किसने अधिकार दिया कि मुझे शिक्षा दे। अतः पौलुस उन्हें समझाता है कि कुछ स्त्री पुरुष को अगुवाई का वरदान दिया गया है और हमें उनका सम्मान करना है, हमें निर्देशों के लिए उनकी ओर देखना है। जी हाँ, आज भी यही समस्या है। बहुत कम विश्वासी परमेश्वर द्वारा दिए गए शिक्षकों की ओर ध्यान देते हैं। विश्वासी कहते हैं कि वे विश्वास करते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है और वे एक एक शब्द पर विश्वास करते हैं, फिर वे उसकी आज्ञा क्यों नहीं मानते? वे उसकी शिक्षा पर ध्यान क्यों नहीं देते? मुझे एक व्यक्ति ने कहा, मैं बाइबल को आरंभ से अंत तक मानता हूँ, परंतु आरंभ और अंत के बीच में क्या है वह मैं नहीं जानता। यह एक दुखद अवस्था है। यदि मनुष्य जान ले कि बाइबल में क्या है तो वे उस पर विश्वास भी करेंगे, परंतु यह कहना कि आप बाइबल में विश्वास करते हैं और उसमें क्या है उसे नहीं जानते, तो यह बड़ा आडंबर है। वह जो कहता है कि बाइबल परमेश्वर का वचन है और विश्वास भी करता है, उसे जानना आवश्यक है कि उसमें क्या लिखा है। अतः परमेश्वर के वचन के प्रचारकों और शिक्षकों की बातों पर ध्यान लगाना आवश्यक है। हम देखेंगे 4वीं आज्ञा, उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। मैं परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वालों का सदैव ही सम्मान करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि वे मेरे मित्र बन जाते हैं। मेरे रेडियो सेवा की एक बात मैं सराहता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे लिए इस देश में अनेक मित्र खड़े किए हैं। उनमें से अनेकों ने मुझे लिखा है कि उनके घर के द्वार मेरे लिए खुले हैं। मैं सबके निमंत्रण तो स्वीकार नहीं कर सकता, परंतु जब भी मैं उनके नगर में होता हूँ, वे मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं। वे अपना प्रेम प्रकट करते हैं। जब वे अपना प्रेम प्रकट करते हैं तो वे दर्शाते हैं कि वे परमेश्वर के वचन का सम्मान करते हैं, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन का सेवा करता हूँ, प्रचार करता हूँ। अब हम देखते हैं 5वीं आज्ञा, आपस में मेल मिलाप से रहो। यह सब एक साथ है। आप में से कोई भी सब कलीसिया का प्रबंध एक साथ नहीं कर सकते। आप सब किसी संस्था को एक साथ नहीं चला सकते। किसी एक को अधिकार का पद संभालना होगा। मेरे विचार में आज कलीसिया की एक घोर समस्या है, सब मिलकर खिचड़ी पकाते हैं। एक को अगुआ होना है और अन्यों को अनुयायी। इस प्रकार आपस में मेल मिलाप बना रहेगा। यदि सब अपने अपने राग आलापेंगे तो मेल मिलाप और शांति की अपेक्षा अन्य सब कुछ होगा। मेरे प्रियो, अब हम आगे देखते हैं 6 से 9वीं आज्ञा तक। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, यह 5वीं आज्ञा की अनुगामी है। आपस में मेल मिलाप से रहो। ठीक चाल नहीं चलने वालों के लिए यह है कि जो पथ भ्रष्ट हैं उन्हें आप समझाओ। मेरे विचार में ये वे हैं जो परमेश्वर के कार्य में सहयोग देने की अपेक्षा अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। उन्हें समझाना होगा ताकि वे भी सच्चाई को जाने। आगे कहता है, कायरों को ढाढ़स दो। ये कायर कौन है? वे जो परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ने से डरते हैं। उन्हें प्रोत्साहन की आवश्यकता है। आज अनेक पवित्र जनों को आवश्यकता है कि कोई उनके कंधे पर हाथ रख कर कहे, मेरे भाई लगे रहो, हिम्मत रखो, पीछे मत हटो, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। किसी कमजोर या डरपोक मनुष्य के लिए यह कैसी शांतिदायक और प्रोत्साहन की बात है। ऐसा समय हम सबके साथ आता है जब हम निराश हो जाते हैं और हिम्मत हार जाते हैं, और कोई हमसे कहता है, प्रिय भाई हिम्मत रखिए, हम आपके साथ हैं, तो हमें बहुत तसल्ली होती है। आगे हम देखते हैं, निर्बलों को संभालो। यह 8वीं आज्ञा है। कुछ विश्वासियों का विश्वास दृढ़ नहीं होता है। वे अभी विश्वास में दूध पीते बच्चे के समान हैं। वे सबके साथ चल नहीं पाते, अतः उनकी सहायता करें, उन्हें ऊपर उठाएं और अपने साथ लेकर चलें। आगे हम पढ़ते हैं, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ, अर्थात क्रोध मत करो। यह एक कठिन काम है। हमारे समक्ष प्रतिदिन अभक्त, अधर्मी, उधार से रहित मनुष्य आते हैं जो हमें धोखा देते हैं, हमारा दुरुपयोग करते हैं। उनके साथ धीरज का व्यवहार करना और क्रोधित न होना बहुत ही कठिन होता है, परंतु परमेश्वर हमें आज्ञा देता है कि हम सबके साथ धीरज धरें। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। यह 10वीं आज्ञा है। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, अर्थात आपस में झगड़े न करें। 11वीं आज्ञा है, सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। जीवन के 3 सिद्धांत हैं या आचरण के 3 मानक हैं। अन्य जाति संसार भलाई का बदला बुराई से देता है, अर्थात इससे पहले कि कोई आप पर हावी हो, आप उस पर हावी हो जाएं। कैसी भी नीति काम में लें, उसने आपके साथ भलाई की तो उसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। यह अन्य जातियों का सिद्धांत है, परिष्कृत, शिक्षित और सभ्य समाज का सिद्धांत है। भलाई करने वाले के साथ भला करें। हमारे राजनीति के दल ऐसा ही करते हैं। यदि किसी ने किसी को चुनाव में जीतने में सहायता की है तो उसे नौकरी दिलाकर या पद दिलाकर एहसान चुकाते हैं, परंतु लुकार्थित सुसमाचार 6 अध्याय के 33 पद में प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। जी हाँ, यदि कोई व्यक्ति आपके साथ भलाई करता है और आप भी उसके बदले में भलाई करते हैं तो कोई लाभ नहीं। विश्वासियों का स्तर भिन्न है। हमें बुराई करने वालों के साथ भलाई करना चाहिए। यह प्राकृतिक मनुष्य की मानसिकता के बिल्कुल विपरीत है। यदि कोई हमें मारता है तो हमारी सहज प्रतिक्रिया है कि पलटकर वार करें। पौलुस इसी प्रवृत्ति के विरुद्ध कह रहा है, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे। पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। वे जो आपके साथ बुराई करते हैं उनके साथ भी आप भलाई करें। हम आगे देखते हैं 12वीं आज्ञा। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, सदा आनंदित रहो। आनंदित रहने का अर्थ हर्षोल्लास नहीं है, वह मदिरा पान के विषय में भी नहीं कह रहा है। हर्ष नए नियम का शब्द नहीं है, यह प्रभु का आनंद है, जैसा उसने फिलिपियों को लिखा है। फिलिपियों के पत्र 4 अध्याय उसके 4 पद में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। ऐसी अद्भुत आज्ञा 10 आज्ञाओं में नहीं है। परमेश्वर की संतान को मुंह लटकाए घूमने की अनुमति नहीं है। परमेश्वर की संतान को झगड़ालू मनुष्य भी नहीं होना है। मेरे मित्रों, यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो आपको सदा आनंदित, अति आनंदित रहना है। यह आत्मा का फल है, प्रेम, आनंद और शांति। यदि आप आनंदित नहीं हैं तो परमेश्वर के वचन को पढ़कर परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपके मन में आनंद भर दे, और वह निश्चय ही ऐसा करेगा। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय उसके 17 पद में लिखा हुआ है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। जी हाँ, यह प्रार्थना की मानसिकता के बारे में है। मेरे विचार में इसका अर्थ यह नहीं कि सदैव घुटने टेके रहें। इसका अर्थ है प्रार्थना करने से न चूकें और प्रार्थना की मनोदशा बनाए रखें। इसके साथ है 14वीं आज्ञा। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय उसकी 18 पद में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में धन्यवाद करो, अर्थात हर परिस्थिति में, साल में एक बार ही नहीं, हर समय धन्यवाद करो। तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। यदि आप मुझसे पूछें कि आपके लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है, तो मैं आपको 3 बातें बताऊंगा जो आपके लिए परमेश्वर की इच्छा है। आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, हर बात में धन्यवाद करो। आपके लिए यह परमेश्वर की इच्छा है। अब हम देखेंगे 15वीं आज्ञा। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसके 5 अध्याय और उसके 19 पद में लिखा हुआ है, आत्मा को ना बुझाओ। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की उपमा आग है। आप आग को कैसे बुझाते हैं? आप पानी डालकर उसका जलना रोक देते हैं। आत्मा को बुझाने का अर्थ है परमेश्वर की इच्छा से इनकार करना। आप पवित्र आत्मा की बात नहीं सुनते हैं। आप पवित्र आत्मा को अपना मार्गदर्शक नहीं होने देते हैं। हम बातों को अपने हाथ में लेकर आत्मा को बुझा देते हैं। इफिसुस के विश्वासियों को भी पौलुस ने यही शिक्षा दी थी। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसके 30 पद में, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। जी हाँ, आप एक व्यक्ति को दुख पहुंचाते हैं, पवित्र आत्मा जीवित है और हमारे पाप के कारण उसे दुख होता है। हम परमेश्वर की इच्छा से बाहर होते हैं तो वह बुझ जाता है। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय उसके 20 पद में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। बाइबल अध्ययन को अपने दर्जे से कम न समझें। परमेश्वर के वचन के प्रति उदासीन न बने। अनेक मिशन परमेश्वर के कार्य को करते हैं, बाइबल का ज्ञान नहीं रखते हैं और बाइबल अध्ययन को तुच्छ समझते हैं। मैं कभी कभी सुनता हूं, तुम बाइबल ही पढ़ते रहते हो, कुछ करते नहीं। आपको कुछ तो करना चाहिए। आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ने में व्यस्त हो जाना चाहिए और आप देखेंगे कि क्या करना चाहिए तथा आपको सफलता भी मिलेगी। मुझे मेरे एक मित्र ने बताया कि 21 वर्ष प्रति गुरुवार उनके यहां बाइबल अध्ययन किया जाता था और 1500 जिज्ञासु वहां पर होते थे। यह कैसे उत्साह की बात थी, यह कैसा सौभाग्य था। परंतु कभी कभी लोग कहते थे, बैठकर बाइबल सुनने की अपेक्षा कुछ किया भी तो करो। रोचक बात तो यह है कि बाइबल अध्ययन में आने वाले बाहर जाकर कुछ करते थे। उनमें से सैकड़ों जन परमेश्वर की सेवा क्षेत्र में सेवारत हैं, सैकड़ों जन परमेश्वर की गवाही दे रहे हैं और सैकड़ों प्रभु की सेवा में हैं। मैंने देखा है कि जो युवक परमेश्वर के वचन का अध्ययन नहीं करते हैं, वे 8 घंटे की सेवा जैसे ही रह जाते हैं। उनकी सेवा अत्यधिक समय नहीं चलती है। जी हाँ, यह सच है कि अधिक समय तक वे सेवा में स्थिर नहीं रह पाते। पौलुस थिस्सलुनीके के विश्वासियों को 16वीं आज्ञा देता है, भविष्यवाणी को तुच्छ न जानो, अर्थात परमेश्वर की वचन की शिक्षा को तुच्छ न जानो। 1 थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। सब बातों को परखो, दूसरे शब्दों में बहकावे में मत आओ। यदि कोई आपको दयनीय दिखने वाले किसी अनाथ बच्चों के चित्र भेजे तो धोखा न खाना। जिन बातों के बारे में आप नहीं जानते उनको सहयोग न दें। जिसको भी आप सहयोग देते हैं उसकी पूरी जानकारी आप प्राप्त करें। विश्वासियों को धोखा खाने वाले नहीं होना है। हमें सब बातों को परखना है। इसमें यह भी है कि किसी की चटुकारी या मीठी मीठी बातों में ना आए। संसार में ठगों की कमी नहीं है। जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सच्ची और खरी बात को थाम लें और बुरे बातों को छोड़ दें। 1 थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय उसके 22 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। जी हाँ, 19वीं आज्ञा समय गंवाने और मनोरंजन से संबंधित है। यदि आपके मन में सही और गलत के संबंध में शंका हो तो वह गलत है। बुराई किसी भी प्रकार की हो उससे दूर रहें। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। 1 थिस्सलुनीकियों 5:23 में लिखा हुआ है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। अब यहाँ देखिए, मनुष्य भी त्रिएक है, देह प्राण और आत्मा। पूरी रीति से पवित्र करे, सिद्ध करे नहीं परंतु पूर्ण परिपक्वता प्रदान करे। हमें मसीह में शिशु ही बने नहीं रहना है, हमें परिपक्वता तक विकास करना है। 1 थिस्सलुनीकियों 5:24 में आगे लिखा है, तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। आप परमेश्वर पर निर्भर कर सकते हैं। आगे लिखा है 1 थिस्सलुनीकियों 5:25 में, हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। जी हाँ, यह 20वीं आज्ञा है कि सुसमाचार प्रचारकों के लिए आप प्रार्थना करें। आप पौलुस के लिए तो प्रार्थना नहीं कर सकते, परंतु मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मैं आपका आभारी होऊंगा। आप अपने प्रभु के दास सेवकों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि वे आपका आभार मानेंगे। 1 थिस्सलुनीकियों 5:26 में लिखा है, सब भाइयों को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। यह भी एक आज्ञा है, परंतु सुनिश्चित करें कि यह एक पवित्र चुंबन ही हो। हमारी संस्कृति में हाथ मिलाना ही बहुत है। 1 थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय उसके 27 में लिखा है, मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूं कि यह पत्र सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। यह 22वीं आज्ञा है, मैं इसका पालन करता हूं। मैंने संपूर्ण पत्री आपको पढ़कर सुना दी है। तब हम आखिरी पद में जाएंगे। 1 थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय उसके 28 पद में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। मेरे मित्रों, मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप पर सदा बना रहे। इसी के साथ आज हमारे अध्ययन का समय यहां पर समाप्त होता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। अगले अध्ययन में हम फिर से मिलेंगे और दूसरे थिस्सलुनीकियों की पत्री पर विचार करेंगे। तब तक आप सब प्रभु की संगति में बने रहें। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है,
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है।
यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है,
यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है।
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है,
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है।
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है,
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, मुझ में
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है,
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है।
जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है,
जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है,
दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन। सारी बीमारियां यीशु के अधीन।